تفسیر سورة العصر مکی سورت ہے، ایک رکوع اور صرف 3 آیات، الفاظ اور کلمات کی تعداد 14، حروف 74، پہلی آیت کے لفظ العصر کو اس کا نام قرار دیا گیا، اس کا موضوع اور مضمون دنیا کی حقیقت بتائی گئی ہے۔ یہ چھوٹی سی مختصر سی سورت مقصد زندگی عطا کرتی ہے، اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے اس کے بارے میں بہت صحیح کہا کہ اگر لوگ اس سورت پر تنہا غور کریں تو یہی ان کی ہدایت کے لیے کافی ہے۔ صحابہ کرام کی نگاہ میں اس سورت کی اہمیت کا ذرا آپ اندازہ کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، جب ان میں سے 2 آدمی ایک دوسرے سے ملتے تو اس وقت تک جدا نہ ہوتے جب تک کہ ایک دوسرے کو سورۃ العصر سنا نہ دیتے، اور ایک چھوٹی سی سورت جو صرف 3 آیات پر مشتمل، اس کے اندر جو معنی ہیں اور جو اس کا مضمون ہے اس کو پوری ایک کتاب میں لکھنا بھی مشکل ہے۔ گویا کہ کوزے کو سمندر کو کوزے میں بند کر دیا گیا ہے۔ بڑی خوبصورت سورت ہے، کیا فرمایا؟ والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ عصر کے معنی کیا ہیں؟ عصر کے 2 معنی ہیں، لفظی معنی تو ہے نچوڑنا، جیسے عربی زبان میں جو رس نچوڑا جاتا ہے، جوس جو ہوتا ہے اس کو بھی عصیر کہا جاتا ہے، اور معنی ایک یہ ہے کہ اثر کا وقت، اثر سے مراد اثر کا وقت ہے۔ اثر کا وقت کون سا ہوتا ہے؟ وہ وقت جو ہے جب سورج ڈھل جاتا ہے، شام ہونے والی ہوتی ہے، اور اس وقت جو ہے ہم سب بہت مصروف ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں رش آورز۔ کیا ہوتا ہے؟ بچوں کو سکولوں میں چھٹی ہو جاتی ہے، آفیسز والوں کا آفس بند ہو جاتا ہے، اور ہر طرف چہل قدمی، رواں دواں، اور ایک رش ہوتا ہے، اور اسی لیے عصر کی نماز کی خاص طور پر تاکید کی گئی، حافظو علی الصلواتی والصلاة الوسطی، اور صلاة وسطی سے مراد جو ہے وہ احادیث میں عصر کی نماز لی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی عصر کی نماز ضائع ہو گئی وہ سمجھ لے کہ اس کا گھر بار اور مال لوٹ گیا، لوٹ گیا۔ تو ایک اس کے معنی ہے اثر کے وقت کے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ شام کا وقت ہے اور عجیب طرح کی ایک کیفیت بھی ہونے لگتی ہے کہ اب دن جو ہے وہ ڈھل رہا ہے، سورج ڈوب رہا ہے، اور وہ جو صبح کے اندر ایک رونق، ایک چہل پہل اور ایک حرارت اور ایک زندگی اور جان تھی نا، اب وہ ایک موت میں تبدیل ہو رہی ہے، ایک ہلچل۔ دوسرے اس کے معنی بیان کیے جاتے ہیں عصر کے، زمانہ، وہی زمانہ، وہی عرصہ جو بنی نوع انسان کی پیدائش سے لے کر قیامت تک کا وقت ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ آپ اس سے پہلے جو ہیں یہ بات بھی پڑھ چکی کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، کیا کہا اللہ تعالیٰ نے سورۃ دہر میں آپ نے پڑھا، هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان پر لامنتہائی زمانے کا ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا؟ یعنی طویل زمانے کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، کبھی دہر آتا ہے اور کبھی عصر آتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ وہ جو میں نے بتایا نا کہ نچوڑتا ہے زمانہ، زمانہ کیسے جو نچوڑتا ہے؟ زمانہ جو ہے نچوڑ کر جوانی کو بڑھاپے میں مبتلا کر دیتا ہے، جوانی کی تر و تازگی، حسن، شگفتگی، رانائی نچوڑ دیتا ہے، اور پھر انسان بوڑھا ہو جاتا ہے۔ زندگی کو نچوڑتا ہے تو موت کی دہلیز پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے، اور قوت اور صلاحیتوں کو نچوڑتا ہے تو قوا مزمحل ہو جاتے ہیں، مزمحل ہو گئے قوا غالب، اب عناصر میں اعتدال کہاں؟ پھر انسان چلتا پھرتا کہتا رہتا ہے کہ بڑھاپا آ گیا ہے، अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, अब जो है वैसी सेहत नहीं रही। तो अल्लाह ताला ने जमाने की कसम खाई। कसम है असर की या फिर कसम है जमाने की, दोनों चीजों की कसम। इसका मतलब ये है कि जमाना जो है ना, दरअसल एक वक्त है और वक्त मसलसल हरकत में है, और सबात एक तगैयुर को है जमाने में। आप देखें कि जो दुनिया में आया फिर वो हमेशा दुनिया में नहीं है, जो बच्चा है वो बड़ा हुआ, जो जवान हुआ वो जरूर बूढ़ा हुआ, और जो दुनिया में जिंदा है वो जरूर मौत की तरफ चला। तो जमाने की कसम कि वक्त जो है हर एक पर गुजर रहा है, वक्त का पहिया गर्दिश में है और उस पहिए के नीचे सब आ रहे हैं, वो सबको निचोड़ रहा है, रगीद रहा है, मसल रहा है, कुचल रहा है, लोगों को खत्म कर रहा है। कसम है जमाने की। अब तक अल्लाह ने जितनी भी कसमें खाई हैं उनमें ये कसम बड़ी शदीद है, और इसके अंदर सूरज भी, चांद भी, सितारे भी, सुबह भी, शाम भी, दिन भी, रात भी, सारी चीजें आ गई। कसम है जमाने की। क्या मतलब है इसका कि हर सुबह असर में मुबतला होती है ना, बिल्कुल इसी तरह हर जवानी बुढ़ापे में, हर जिंदगी मौत में मुबतला होकर रहेगी। जमाना किसी को एक हाल में रहने नहीं देगा। फिर आगे दो आयते हैं, मजीद दो आयते हैं। दूसरी आयत में एक बहुत अहम ऐलान है, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। कभी आप मॉल में हो और सेल लगी हुई है और अनाउंसमेंट होती है कि वो जो 1 घंटे की सेल थी, वो जो अर्ली बर्ड चाइल्ड सेल थी, वो क्या है? अर्ली बर्ड सेल, जो सुबह सुबह की सेल थी वो क्या है? उसके बस खत्म होने में 10 मिनट बाकी हैं, 5 मिनट बाकी हैं, बस 2 मिनट बाकी हैं। अब फिर क्या होता है कि सेल का टाइम खत्म हो जाता है ना? अब यहाँ पे भी एक अहम अनाउंसमेंट है, और ये अनाउंसमेंट कैसी है? इन्नल इंसान लफी खुसर। बेशक हकीकत में अल इंसान, ये जो हजरत इंसान है ना, लफी खुसर, ये खसारे में है। अल इंसान से मुराद हर तरह का इंसान है, नेक भी और बद भी। तो बद तो समझ में आई कि वो खसारे में है, तो नेक इंसान कैसे खसारे में है? इसकी वजह यह है कि बद जब मर जाएगा तो उसका जब उसकी जब जान निकाली जाएगी कब्र में, हशर नशर नामाए माल जब मिलेगा, तो उस वक्त वो रोएगा, चीखेगा और सोचेगा कि मैं तो असाबुल यमीन की बजाय जो है वो असाबुल मशमा में शामिल हो गया, मैं तो शरुल बरिया में आ गया, मेरा अंजाम तो सिज्जीन है। ममा दुआ का मा सिज्जीन, और तुम क्या जानो कि वो सिज्जीन क्या है? वो तो जहन्नुम का कैद खाना है, वो तो हमीम व गस्साक है, वो तो तगैया व जफीर है। तो उस वक्त इंसान जो है उसको पता चलेगा कि मेरी दौलत, मेरा माल, मेरी जवानी, हसब नसब, मेरी इतनी लंबी उम्र, मेरी इतनी जो खताबत थी मेरे किसी काम नहीं आई। अच्छा, दूसरी तरफ जो नेक इंसान है ना, जब वो वहां पे पहुंचेगा तो उसको अपनी नेकियां बहुत थोड़ी लगेंगी, उसको अपना ईमान बहुत कमजोर लगेगा, उसको लगेगा कि फलां लम्हा क्यों जाया किया, फलां वक्त में ऐसे क्यों किया, मैंने और नेकियां क्यों ना कमाई। वो कहेगा कि काश के मैं जन्नत के सबसे आला दर्जे पे पहुंचा, जन्नत के 100 दर्जे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम अल्लाह से जन्नत मांगो तो जन्नतुल फिरदौस का सवाल करो, और जन्नतुल फिरदौस जन्नत का सबसे आला दर्जा है, रहमान के अर्श के नीचे है और जन्नत की सब नहरें वहां से जारी होती हैं और बड़ी खूबसूरत है वो जन्नत। तो अब नेक लोग भी क्या कहेंगे कि और लोगों को जब देखेंगे कि दर्जों में हमसे ऊंचे हैं तो कहेंगे और नेकियां क्यों नहीं की ना, तो इस बात पे हसरत होगी। और खसारे का मतलब क्या है कि जैसे आप देखें कि तालबे इल्म को 3 घंटे दिए जाते पेपर हल करने के लिए, अगर वो 3 घंटों में जो है वो एग्जामिनर के ड्रेस को ही देखता रहे, साथ वाले स्टूडेंट के कपड़ों को देखता रहे, किसी की लिखाई को देखता रहे, तो उसने तो वक्त जाया कर दिया। अब उसको कोई टाइम नहीं मिलेगा, वो कहता है मुझे 5 मिनट दे दे, मुझे 2 मिनट दे दे। मुझे अपनी तालबिल्मी के जमाने में एक दफा मुझसे गलती हुई है, और वो गलती क्या थी कि मैं उर्दू में पूरे यानी अपने कॉलेज में टॉप करती थी और बहुत अच्छी यानी मार्क्स आते थे, और टीचर मेरी बड़ी खुश होती थी, जितने भी उर्दू के सेक्शन को पढ़ाती थी सब में माशाल्लाह। लेकिन जब मेरा फाइनल ईयर का एग्जाम था उसका, तो मतलब वो बना बना के और अच्छा अच्छा लिखना, मुझे एहसास ही ना रहा कि वक्त क्या, मैं एक सवाल मिस हो गया। आज तक मुझे उसका गम है ना कि मैंने वो पेपर जो था पूरा क्यों ना किया, क्योंकि हमेशा आप टॉप करें और जाहिर फितरी बात है कि पूरा एक सवाल नहीं किया तो मेरे लिए तो उसके अंदर से मुझे कोई भी जो है वो नंबर ना मिला ना, लेकिन उसका मुझे क्या फायदा हुआ। मैं अक्सर इस मिसाल को अपनी आखिरत के साथ जोड़ती हूँ कि अगर मैंने अपना वक्त को और जिंदगी को, जवानी को और टाइमिंग को जाया कर दिया तो फिर आखिरत में क्या होगा ना। तो ये है असल बात कि घड़ी तो हरकत में रहती है, वक्त तेजी से गुजरता चला जाता है। इमाम राजी ने किसी बुजुर्ग का कॉल नकल किया, ये बड़ी खूबसूरत इनका ये कॉल है, आप इसको समझे। वो कहते हैं, मैंने सूरत असर का मतलब एक बर्फ फरोश से समझा जो बाजार में आवाज लगा रहा था कि रहम करो उस शख्स पर जिसका सरमाया घुला जा रहा है, रहम करो उस शख्स पर जिसका सरमाया घुला जा रहा है। उसकी ये बात सुनकर मैंने कहा, ये है वल असर इन्नल इंसाना लफी खुसर, ये उम्र की मुद्दत जो इंसान को दी गई है वो बर्फ के घुलने की तरह तेजी से गुजर रही है, इसको अगर जाया कर दिया या गलत कामों में लगाया तो बेशक इंसान खसारे में है। तो अल्लाह ताला ने गुजरते जमाने की कसम खाकर, इस कसम खाई तो किस बात पर खाई, फिर सारे के सारे लोग जो हैं वो खसारे में हैं मगर जिनके अंदर ये चार सिफात हों। अब एक आयत है और चार सिफात हैं, और चार सिफात क्या हैं? इल्लल्लज़ीना आमनू, नंबर एक के वो ईमान लाए, और ईमान पहली सिफत है। ईमान किसे कहते हैं? ईमान के मानी है सद्दका हु वा तमदा अलैह, सद्दका हु का मतलब है उसकी तस्दीक की, वा तमदा अलैह और उस पर एतमाद किया, यानी अगर कोई कहता है ना आमना ला कि मैं उस पर ईमान ले आया, तो इसका यह मतलब है कि ऐसे तस्दीक करना कि फिर पीछे ना फिरना। सूरत अल हुजरात आयत 15 में ईमान लाने वालों की तारीफ क्या की गई, इन्नमल मुमिनून अल्लजीन आमनू बिल्लाही व रसूलही थुम्म लम यरताबू, मोमिन तो हकीकत में वो हैं जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए फिर शक में ना पड़े। जो शक में रहते हैं ना, इसका मतलब है कि ईमान नहीं लाए। तो इस्तकामत, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुना अल्लाहु सुम्मा इस्तकामू, सूरत हामिम सजदा आयत 30, जिन लोगों ने कहा अल्लाह हमारा रब है और फिर उस पर डट गए, इसको ईमान कहते हैं। और ईमान किसे कहते हैं? इन्नमल मुमिनूना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम, सूरत अल-अनफ़ाल आयत 2, मोमिन तो हकीकत में वो हैं कि जब अल्लाह का जिक्र किया जाए तो इनके दिल लरज उठते हैं। और ईमान किसे कहते हैं? वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, सूरत अल बकरा आयत 165, कि वो सबसे बढ़कर अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। अब आप देखिए कि अब हमें पता चला कि ईमान किसे कहते हैं, जो बहुत दिनों से पढ़ भी रहे थे। तो नंबर एक, अल्लाह पर ईमान है। अब ये नहीं कि हाँ अल्लाह मौजूद है बस इतना ही मानना काफी है, बल्कि इसके मानी ये हैं कि फिर जो है इबादत में, मामलात में जो है हम अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराएं। फिर इसके मानी ये हैं कि जब अमल करने की बारी आए तो फिर जो है ऐसे अमल करें कि अपने दिल का ना कहना माने, अल्लाह का कहना माने, फिर जमाना और सोसाइटी और पीयर प्रेशर फिर उसका शिकार ना हो, बस एक अल्लाह का कहना मानना। तो ये है कि हमारा अल्लाह पर ईमान है। तो अल्लाह पर ईमान है, इसका कैसे पता चलेगा? कि फिर अल्लाह की अतात करें। तो ईमान को ना आप चार हिस्सों में बांट सकती हैं, नंबर एक जानना, नंबर दो मानना, नंबर तीन इकरार करना, नंबर चार अमल करना। जानने का ताल्लुक किससे है? जो है वो किसी चीज के बारे में जानते हैं, दिमाग। मानने का किससे ताल्लुक है? दिल। यानी दिल और दिमाग दोनों का ताल्लुक जानने और मानने से है। इकरार किससे करते हैं? जबान से, इकरार बिल लिसान। अमल का ताल्लुक किससे है? पूरे जिस्म के आजा से, जवारे से। ईमान मुकम्मल होता है जब इन चारों मरहलों में से हम पूरा गुजर जाते हैं। दिल, दिमाग उसने उसको तस्लीम कर लिया, जबान कहने लगी कि हाँ ये हक है, आखिरत आकर रहेगी, मौत आकर रहेगी, और अमल फिर उसकी तैयारी करनी शुरू कर दे। मसलन आपकी अब दुआ होने वाली है, आपकी ग्रेजुएशन होने वाली है, और आप लगी हुई है उसकी तैयारी करने, तो आपका इस पर ईमान है कि हाँ वो दिन आने वाला है। आपको कोई कार्ड मिल जाए, शादी कार्ड, और आप कहती हैं कि जाऊंगी किसके साथ, कपड़े क्या पहनूंगी, तोहफा क्या लेकर जाऊंगी, अच्छा वहां फलां फलां भी आएगा, ये बात मैं उससे भी कर लूंगी, तो ये आपकी तैयारी बता रही है कि आपका इस पर ईमान है। तो अल्लाह पर ईमान, तो उसकी अतात, फिर अल्लाह के रसूल पर ईमान। अल्लाह के रसूल पर ईमान का मतलब क्या है कि सीरत का मताला किया जाए, जाना जाए, जानना और मानना कि वो हमारे रोल मॉडल हैं, वो रसूल हैं, अल्लाह के एम्बेसिडर हैं, अल्लाह के भेजे हुए, उनकी जिंदगी का मताला करना और उनको अपना अमली नमूना अपने सामने उनका रखना। फिर क्या करना, जबान से इकरार करना कि मेरा रोल मॉडल कोई फिल्मी एक्टर नहीं है, कोई एक्ट्रेस नहीं है, कोई खिलाड़ी नहीं है, कोई ये मॉडलिंग करने वाली औरत या लड़की नहीं है, बाजारी औरतें नहीं है, दुनियादार औरतें नहीं है, कोई भी दुनिया की दौड़ में आगे निकलने वाली मेरा रोल मॉडल नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ये मेरा रोल मॉडल नहीं हो सकती, मैं तो अल्लाह के रसूल पर ईमान लाई हूँ तो वो मेरा रोल मॉडल है। तो रसूल की क्या करें, फरमा बरदारी करें, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर चलें। फिर तीसरा हमारा ईमान फरिश्तों पर होता है। हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से फरिश्ते हैं जो अल्लाह की पुलिस हैं, क्या क्या काम करते हैं, और जाने माने इकरार करें, और फिर अमल क्या करें। मसलन किरामन कातबीन तो लिख रहे हैं, अब अमल क्या करना है, जबान की हिफाजत। और औरतों में ये बीमारी बहुत ज्यादा पाई जाती है कि वो जबान की हिफाजत नहीं करती, और इस वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने औरतों को जहन्नुम में ज्यादा देखा, कहा कि अगर तुम मुझे दो चीजों की जमानत दो, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूँ, एक जबान और दूसरा शर्मगाह। तो आप देख लीजिए कि फिर फरिश्तों पर ईमान क्या है। मैं अक्सर इस बात पर सोचती हूँ कि पुलिस को देखते हैं तो गाड़ी चलाते हुए बेल्ट पर निगाह जाती है, पीछे नहीं मुंह करते कि पुलिस को पता ना चल जाए, सीधे गाड़ी चलाते हुए आहिस्ता आहिस्ता कहते हैं कि बेल्ट लगाई हुई है बच्चों आप लोगों ने, सब ने बेल्ट लगाई, चेक कर लो जरा सब। तो ये है दुनिया की पुलिस का हाल, बच्चों गार्बेज कैसे रखा था, ठीक रखा था, कौन से दिन में रखा था, कौन से डब्बे में डाला था, वरना टिकट घर आ जाएगा। और एक बार हमारे घर मेहमान आए, गए रात के 12 बजे, अमेरिका की बात है, फिर उनका मुझे फोन आया, कहने लगे कि वो रात को जो है वो रेड लाइट पर हमने गाड़ी चला दी, चले गए क्योंकि रात थी, और फिर उसके बाद जो है वो घर हमारे घर ना टिकट आ गया। मैंने कहा वो कैसे, कहने लगे हमें पता ही नहीं था कि वहां चौक में न्यूयॉर्क में ना वो लगा हुआ था कैमरा। तो हम कैमरे से डरते हैं, हम पुलिस से डरते हैं, हम देखते हैं कोई देख तो नहीं रहा, हम रकीब से डरते हैं। तो फरिश्ते अल्लाह के, अल्लाह की पुलिस है। मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैही रकीबुन अतीब। तो ईमान का मतलब क्या है, फरिश्तों से मोहतात रहे, काम करें तो नेक करें। और फिर हमारा कुरान पर ईमान है, किताब पर। अच्छा, किताब पर ईमान कैसे मुकम्मल होगा, उसी के मरहले मैं और आप मिलकर तय कर रहे हैं कि सूरत फातिह से लेकर अन्नास तक पढ़ना है। लफ्जी तर्जमा, रूट वर्ड, तफसीर, मानी, मुद्दा क्या है। अच्छा, जान लिया, मान लिया, अब बारी है इकरार की कि हाँ मुआशी निजाम इस्लाम का अच्छा है, इखलाकियात भी इस्लाम की अच्छी हैं, और मईशत मुआशरत सियासत ये भी कुरान की अच्छी है। अब मेरी सीरत किरदार इखलाक कुरान के मुताबिक ढलेंगे। कुरान में हो गौतजन ए मर्द मुसलमान, कुरान में हो गौतजन ए मर्द मुसलमान, अल्लाह करे तुझको अता जुर्रत किरदार। और किस पर हम ईमान लाते हैं, आप देखें कि सूरत फातिहा से लेकर अन्नास तक ये मेरा सिलेबस है, और कुरान मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक इस सीरत का मताला ना किया जाए। प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों को साथ साथ लेकर चलना है तो हमारा ईमान मुकम्मल होगा। अब बात इसमें खत्म नहीं हो जाएगी कि 2-2.5 साल का कोर्स हो गया और खुशियां मनाएं और ग्रेजुएशन और फिर पार्टियों का एक सिलसिला और फिर सर्टिफिकेट और फिर मेडल और फिर बाहर जाके वो एक मेरी स्टूडेंट एक दफा अमेरिका की, कई लोगों ने बताया कि पोते ने दावत दी, रेस्टोरेंट में दावत हुई, बेटे ने दावत की, बच्चे ग्रेजुएशन, और एक स्टूडेंट ने पूरी क्लास को बहुत बड़े एक रेस्टोरेंट में दावत दी कि ग्रेजुएशन, अब हमारी भी ग्रेजुएशन है ना। तो इससे बात बनेगी नहीं जब तक कि ये हमारे अमल में उतरेगा नहीं, ईमान मुकम्मल नहीं होता। और फिर इसके अलावा आखरत पर ईमान, कयामत पर ईमान, तो जितने भी मराहिल है ना कयामत और आखरत के, वो हमें मालूम होने चाहिए, कयामत से लेकर यहां तक के जन्नत में दाखिला, इसके बीच के सारे मराहिल, सफर क्या क्या, कैसे कैसे, और कौन कौन गुजरेगा, कौन रोका जाएगा, कौन पकड़ा जाएगा, जान कैसे निकलेगी, कब्र में रोशनी किन लोगों के लिए है, अंधेरा किन लोगों के लिए है, हशर के दिन कौन लोग पसीने में होंगे, कौन पुरसकून होंगे, पुल से रात पर किसको रोक लिया जाएगा, कौन जहन्नुम के आंकड़े जो सौदान की तरह उनको खींच लेंगे और कौन ऊपर से गुजर कर चला जाएगा। ये सारे मराहिल पता हो, जहन्नुम से बचें और जन्नत की तैयारी करें तो ईमान मुकम्मल होता है। और फिर ईमान तकदीर पर, तकदीर पर ईमान कैसे मुकम्मल होता है? तकदीर किसे कहते हैं कि पूरी कोशिश करने के बाद फिर मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दिया जाए। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु से किसी ने तकदीर का मतलब पूछा, तकदीर क्या है? आपने कहा कि एक टांग उठाओ, उसने टांग उठा ली। फिर उसने आपने कहा कि अच्छा दूसरी भी उठाओ, कहा ये नहीं मैं उठा सकता, फिर मैं गिर जाऊंगा, कहा इसी को तकदीर कहते हैं। कुछ तुम कर सकते हो और कुछ तुम्हारे इख्तियार में नहीं है। बाज लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं और कहते हैं कि जो तकदीर में है, जो किस्मत में है वो होकर रहेगा, इसको तकदीर नहीं कहते। दवा करके फिर दुआ करनी चाहिए, मामला अल्लाह के सुपुर्द कर देना चाहिए। और बाज चीजें ऐसी हैं कि पूरी कोशिश के बावजूद जो है कि नाकामी है, जॉब नहीं है, औलाद नहीं है, शादी कामयाब नहीं हुई, बीमारी आ गई, कुछ भी मसाइल या हादसा हो जाते हैं जिंदगी में सारी तदबीरों के बाद, तो फिर असल बात क्या है कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को याद रखें कि कितनी तदबीर की थी ना, यूसुफ की भी और बिन्यामीन की भी, फिर हुआ क्या कि तदबीर पर तकदीर गालिब आ गई। तो कुछ चीजें अल्लाह ने किस्मत और नसीब में रखी हैं। और मसलन मैं अभी सोच रही थी कि मेरी इंतजामिया से, ये जो हमारे कल ग्रेजुएशन दुआ आपकी होने वाली है, तो बात हो रही थी तो आपके लिए स्काफ का ऑर्डर दिया हुआ था और सारे जो बनकर आ रहे थे तो पता चला कि सारा सामान बाकी तो आया है लेकिन वो अटैच ही नहीं आया जिसके अंदर जो आपके स्काफ थे, तो वो दुबई में है। तो मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने अपने दिल का जायजा लिया, मेरे दिल को कुछ भी नहीं हुआ, मुझे ना कोई अफसोस ना कोई परेशानी। मैंने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन और अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्लि हाल, अल्लाह को शायद यही पसंद था और किस्मत में होगा तो हो सकता है आज आ जाए वरना फिर नहीं, तो कोई बात नहीं। ये हमारी हर मौके पर जो है ना यही सोच होनी चाहिए, पूरी कोशिश के बावजूद। अक्सर जुमे के दिन अच्छा खाना मैं पकाती हूँ कि घर में जो है वो जुमे का दिन है, बच्चों को अच्छे खाने की वजह से जुमे की मोहब्बत महसूस हो। और एक दिन अमेरिका से मेहमान आए, ऑर्डर दिया हुआ था खाने का, और हुआ क्या कि उन दिन को कहा हुआ था कि आप खाना देना है, वो सब्जी शाम को खाना है, रूटीन का भी मैंने नहीं पकाया। और मैंने एक मीटिंग भी रखी हुई थी, यहाँ से क्लास से कि जाते ही मैंने फोन पे मीटिंग शुरू कर दी। मैंने कहा कि आज तो खाना भी बाहर से आना है, और जो मेहमान थी मैंने कहा जरा तुम तो जुमा पढ़कर आओ तो फिर खाना देंगे। और जब 2:30 हुए और जब खाने के लिए सब कुछ आया तो पता चला कि मैंने उनको फोन किया, उन्होंने कहा कि मैं ये समझे कि खाना जो है ना शाम को देना है। मैंने कहा कि अच्छा, मैंने कहा इतना वक्त भी जाया नहीं करती कि फोन जो है ना इस पे बात करूं ना, तो बहरहाल वो वक्त गुजर गया जो भी था। मिसाल क्या दे रही हूँ, ऐसे वो वक्त होता है जिसपे हाथ पांव फूलते हैं, हम आपे से बाहर होने लगते हैं, गुस्सा नाराजगी, कभी किसी को कोसते हैं कभी किसी को, लेकिन क्या है कि तकदीर, इसी को फिर तकदीर कहते हैं। अमन्ना व सदकना बहुत सी मिसालें हैं। तो बहरहाल बात हो रही थी ईमान की, इल्लल्लज़ीन आमनू, मगर वो लोग जो ईमान लाए। पहली चीज है ईमान और ईमान की मिसाल है बीज की, ठीक है, और चार बातें इसके अंदर याद रखनी है। फिर दूसरी चीज है वह अमिलु सवालेहात और अमले सवाले किए। ईमान अच्छा होना चाहिए, बीज अच्छा होना चाहिए, उम्दा होना चाहिए, और ईमान का बीज लगेगा दिल की खेती पर, जिस्म के अज़ा पर। दिल अगर बंजर है, पत्थर है, पहाड़ से भी सख्त है, फिर इस पर फल फूल नहीं आएंगे। अच्छा, इसके लिए बारिश कौन सी होगी जो दिल को नरम करेगी? कुरान की आयात, मौत की याद, इससे दिलों के जंग दूर होते हैं, दिलों की सख्ती जाती है, दिलों की सख्ती जाती है। और फिर जो है वो दिलों दिल जब नरम होते हैं और नरम होकर आंखों के रास्ते बहते हैं तो फिर आयात दिलों के अंदर जगह पाती हैं, फिर इंसान अपना मुहासबा करता है, फिर रोता है, फिर अल्लाह से तौबा करता है, और फिर वो क्या कहता है, ये सब तेरा करम है आका के बाद अब तक बनी हुई है। कि एक तरफ वो ज्यादा से ज्यादा नेकियां करना चाहता है और दूसरी तरफ जो है वो साथ साथ अल्लाह से दुआ भी करता है कि अल्लाह ताला तू मेरे गुनाह माफ कर दे। एक तरफ वो अल्लाह की हम्द बयान करता है, अल्लाह की किबरियाई बयान करता है, और दूसरी तरफ वो अपने गुनाहों का एहसास भी करता है।
बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। किस जबां से करूं तेरी सना, तू बड़ा रहीम करीम है, तेरा नाम मालिक के ब्रिया, तू बड़ा रहीम करीम है, जिसे चाहे खुल्द अता करे, जिसे चाहे आग में झोंक दे, तेरे हाथ में है सजा जजा, तू बड़ा रहीम करीम है, कहीं बर्क बन के खुल दिया, कहीं अब्र बन के बुझा दिया, जो किया सो तूने बजा किया, तू बड़ा रहीम करीम है, कोई शाह कोई अमीर है, कोई बेनवाज फकीर है, जिसे चाहे जैसा बना दिया, तू बड़ा रहीम करीम है, किस जबां से करूं तेरी सना, तू बड़ा रहीम करीम है, तेरा नाम मालिक किब्रिया, तू बड़ा रहीम करीम है।
हमारा काम क्या है कि ईमान लाने के बाद अमले स्वाले करना, और इन दोनों चीजों का ताल्लुक जो है इनफरादी जिंदगी से है। और फिर अल्लाह जो है हमारे गुनाह माफ कर दे और हमारी नेकियों को कबूल कर ले। और हकीकत यह है कि अल्लाह बड़ा रहीम और करीम है। फिर इसके बाद दो खूबियों और सिफात का जिक्र किया जा रहा है जिनका ताल्लुक इज्तमाई जिंदगी से है, कि मुसलमान अपनी जात के लिए नहीं जीता। बीज जब जमीन में लगाया जाता है और दरख्त जब निकलता है, अब क्या हुआ कि उसके शाखों के नीचे आकर लोग बैठते हैं, वो दूसरों को साया देता है और उसका फल दूसरे खाते हैं आकर। अब जो भी मोमिन है, जो भी मुसलमान है, अब वो क्या करेगा, फिर वो क्या करेगा, हक ने की हैं दोहरी दोहरी खिदमतें तेरे सुपुर्द, खुद तड़पना ही नहीं औरों को तड़पाना भी है, खुद सरापा नूर बन जाने से कब चलता है काम, तुझको इस जुल्मत कदे में नूर फैलाना भी है। फिर वो क्या करता है कि वो नेकियों में फिर आगे बढ़ता है, अमले सवाले फिर उसको आमादा करते हैं, वतावासाउ बिलहक, कि वो एक दूसरे को हक की नसीहत करें। कुन तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासी तामुरूना बिलमारूफी वतनहाउना अनिल मुनकर। अब वो क्या करता है कि ईमान लाकर और अमले सवाले करने के साथ साथ फिर वो नेकियों को फैलाने लगता है। और यहाँ पे अमले सवाले बताया जा रहा है, और अमले सवाले क्या है कि सिर्फ अपने लिए नहीं जीना, दूसरों के लिए भी जीना है, आपस में एक दूसरे को हक की नसीहत करना। क्योंकि यहाँ पे वतावासाउ और वसीयत होता है ताकीदी हुक्म, एक होता है ना कि कोई आम बात करता है और आम बात नहीं, वो बात जो बड़ी ताकीद के साथ की जाती है उसके लिए जो है वतावासाउ का लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो अब क्या सिफत है कि वो एक दूसरे को हक बात की वसीयत करते हैं, खुद भी नेक बनते हैं, सोसाइटी में भी नेकी का प्रचार करते हैं, वो कोशिश करते हैं कि इर्द गिर्द की सोसाइटी में नेकी का माहौल जो है वो फैलता चला जाए, और वो इर्द गिर्द के माहौल में जो है वो नेकियों को फैलाने वाले बन जाते हैं। तो चूंकि अब कुरान की इख्तिताम पर पहुंच रहे हैं और यहाँ पे हम सबको अब एक ही पैगाम दिया जा रहा है, और वो पैगाम क्या है कि हम अपनी सोसाइटी में नेकियों को फैलाने वाले बनेंगे, है ना, क्या करेंगे कि दूसरों को भी बताएंगे जिंदगी का मकसद क्या है, कि जो लोग सीधे रास्ते से भटक गए हैं फिर हम उन्हें सीधा रास्ता जो है वो दिखाएंगे, तो ये है फिर उनकी जिंदगी का मकसद। ए दोस्त तेरी जीस्त है एक जोहदे मसलसल, फुर्सत भी मयसर हो तो फुर्सत ना समझना। फिर क्या करेंगे कि फिर हमारे पास कोई भी फरागत नहीं है, फिर हम एक एक लम्हा जो है वो अल्लाह के दीन को फैलाने के लिए वक्फ कर देंगे, ये है उनकी जिंदगी का मकसद। और अल्लाह ताला तो खुद कहते हैं कि वमन आसनु कौलम मिम्मन दा इलल्लाही व अमिल सालिहन व قال انني من المسلمين सूरत हामिम सजदा आयत 33। अब आप सोच लें कि अब क्या करना है, आपस में नेकी की वसीयत करनी है। हक हक क्या है, दीन इस्लाम, कुरान, अल्लाह के रसूल का उसवा, ये सारी चीजें हक हैं और इसको सोसाइटी में फैलाना है, ये है। और ये अमल अकेले नहीं करना, मिलकर करना है, और फिर इसके लिए हमें और लोगों को अपने साथ जो है वो मिलाना होगा। अच्छा, इसके बाद फिर एक और अहम खूबी है और वो है वतावासऊ बिसब्र, और वो आपस में तलकीन करते रहे, वसीयत करते रहे सबर की। तो दावा का काम जो है वो सबर के बगैर नहीं हो सकता। एक दाई जो है ना वो दाई नहीं बन सकता जब तक कि वो सबर ना करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी सबर की जिंदगी थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्की दौर को आप देख लें और मदनी दौर को देख लें कि आप जो थे वो आगे ही आगे बढ़ते रहे, सारी तकलीफें, सारी मुश्किलें, सारे जो गम थे उनको जो थे वो बर्दाश्त करते रहे और क्या करते रहे, अल्लाह के दीन को फैलाते रहे। शहर तो शहर बदल जाएंगे वीराने तक, शब की बजाय शमाए दिल को जला के तो देख, है ना। तो अंधेरे दूर करने के लिए कुरान की शमा, दिल की शमा जो है वो हम सबको जलानी पड़ेगी कि हम जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को नेकियों की दावत दें। ख्वाब ढल सकते हैं ताबीर के पैमाने में, हो अगर शौके तलब सोजो वफा जज्बो यकीन, कुव्वते जोहदो अमल वो है कि खाकी इंसान अपने कदमों पे झुका सकता है तारों की जबीं। आओ मातम के एवज जुर्रते पेकार करें, बढ़ के इन मस्क उजालों पे कोई वार करें। तो असल बात क्या है कि मैं और आप हालात का रोना तो रोते रहते हैं लेकिन जो अमल करना चाहिए ना, मैं और आप वो अमल नहीं करते। तो इन आयात में उम्मत वस्त का मकसद जिंदगी बताया गया है, उखरिजत लिन्नासी तामुरूना बिलमारूफी व तनहाउना अनिल मुनकर, कि वो नेकी का हुक्म देते हैं और खुद अकेले नहीं सब मिलकर, और फिर इस रास्ते में जो तकलीफें आती हैं, जो मुसीबतें आती हैं, जो परेशानियां आती हैं, उनको खंदा पेशानी से बर्दाश्त करते हैं। तुझे तो क्या तेरे जलवों की जो भी पा ना सके, जो जिंदगी को तेरी राह में लुटा ना सके। हयात शौक भी एक सजदाए मसलसल है, सरे न्याज झुकाया तो फिर उठा ना सके। मेरी नजर में वही सर है, सर जिसे आमिर जमाना काट तो डाले मगर झुका ना सके। तो सबर की तलकीन की जा रही है और यह है सूरत असर। तो इसके अंदर बताया जा रहा है कि कसम खाकर अल्लाह ताला कहते हैं कि हर इंसान खसारे में है मगर जिसके अंदर चार सिफात पाई जाएं, दो का ताल्लुक इंफरादी जिंदगी से है ईमान और अमले सवाले, और दो का ताल्लुक इज्तमाई जिंदगी से है। और इज्तमाई जिंदगी का फिर मतलब क्या है कि हक ने की है दोहरी दोहरी खिदमतें तेरे सुपुर्द, खुद तड़पना ही नहीं औरों को तड़पाना भी है, खुद सरापा नूर बन जाने से कब चलता है काम, तुझको इस जुल्मत कदे में नूर फैलाना भी है। तो वतावासऊ बिलहकी वतावासऊ बिसब्र, तो अब बेहतरीन दाई बनना है जिसके पास ईमान भी है, अमले सवाले भी है, और वो अपने आप को संवारने के साथ साथ दूसरों को संवारने की भी फिक्र करता है। तो ये है मेरी और आपकी जिंदगी का मकसद। छोटी सी सूरत असर पूरे के पूरे कुरान को समेट दिया, रसूलुल्लाह के पूरे उसवे को समेट कर रख दिया। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने वाला बनाए। सुभानकल्लाहुम्मा वा बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका नस्तगफिरुक, सुभानकल्लाहुम्मा वा बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता। वनतुबु इलैक।